जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद चरितामृत मध्य लीला अध्याय 6 सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति प्यार 145-146 भगवान बहु है ते यभे कैला मना प्राकृत शक्ति ते तबे कैला विलोकना से काले नहीं जन्मे प्राकृत मनोनयना अतएव अप्राकृत ब्रह्मोर नेत्र शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बहु अनेक हैते होना जबे जब कैला किया मना उनका मन प्राकृत भौतिक शक्ति ते शक्ति पर तबे उस समय कैला किया विलोकना देखा से काले उस समय नहीं जन्मे सृष्टि में प्राकृत भौतिक मनह नयन मन तथा नयन अतएव अतएव अप्राकृत दिव्य ब्रह्मोर परम सत्य के नेत्र मना नयन और मन। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक होने की इच्छा की तब उन्होंने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया। सृष्टि के पूर्व भौतिक नेत्रों या मन का अस्तित्व नहीं था, अतएव परम सत्य के मन तथा नेत्रों की दिव्य प्रकृति की पुष्टि होती है। छांदोग्य उपनिषद 6-2-3 में कहा गया है, तदैक्षत बहुस्याम प्रजा येय। इस श्लोक से उसकी इसकी पुष्टि होती है कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक बनना चाहते हैं तो भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात मात्र से ही सृष्टि प्रकट हो जाती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि इस जगत की सृष्टि के पूर्व भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया। सृष्टि के पूर्व न तो भौतिक मन था न भौतिक नेत्र, अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जिस मन से सृष्टि करनी चाहिए वह दिव्य है और जिन आंखों से उन्होंने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया वे भी दिव्य है। इस प्रकार भगवान का मन नेत्र तथा अन्य इंद्रियां दिव्य हैं। हरे कृष्ण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य का प्रवचन सुन रहे थे और 7 दिन बाद कहते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा उनसे, आपको कुछ समझ आया? तो बोल रहे हाँ, वेदांत सूत्र के जो कथन है वो तो सूर्य के समान बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन आपके जो व्याख्यान है, जो शारीरिक का भाष्य शंकर भाष्य से आप व्याख्यान कर रहे हो, वो बादलों के समान सूर्य को ढक रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला ठीक है, आप बताइए फिर। तो अब महाप्रभु अपना प्रवचन चालू करते हैं। तो ये महाश्री चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान परम सत्य के नॉट भगवान एक्चुअली परम सत्य के एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में बता रहे हैं कि जो परम सत्य है वो साकार ब्रह्म है। निराकार ब्रह्म भी है लेकिन साथ साथ वो उनका जो मूल भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का रूप है वो भगवान फॉर्म है। अब पिछले मरीज के जीता मित्र प्रभु जी ने चर्चा भी किया था, भगवान एरे सब विशेष यही तीन चिन्ह कि भगवान जो है साकार स्वरूप है और ऑफ कोर्स वो निराकार रूप प्रकट करते हैं ब्रह्म ज्योति के रूप के अंदर। तो यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वही चर्चा कर रहे हैं कि इस जगत की सृष्टि होने से पता लगता है कि जो ब्रह्म है, जो परम सत्य है, वो साकार ब्रह्म है, निराकार या निर्गुण नहीं। दैट शोज दैट एब्सोल्यूट ट्रुथ इज ट्रांसेंडेंटल एंड ही हैज ट्रांसेंडेंटल माइंड एंड सेंसेस, कि परम सत्य एक भगवान है, उनके पास भी इंद्रियां हैं, उनके पास भी मन है, लेकिन वो सब क्या है, दिव्य है, आध्यात्मिक है, वो हमारी तरह भौतिक नहीं है। तो जब ये निराकार ब्रह्म के जो उपासक होते हैं ये कहते हैं कि भगवान है लेकिन उनके आंख नहीं है, उनके पास मुंह नहीं है, उनके पास कान नहीं है, जिह्वा नहीं है, मन नहीं है। तो एक बार एक राजा जो है उसके पास एक जो पक्षी बेचने वाला होता है उसने बड़ा सुंदर और बहुत ही बढ़िया तोता जो है पिंजरे के साथ में राजा को गिफ्ट किया। तो राजा के मंत्री ने जो है राजा ने अपने मंत्री को दिया, बोले इस तोते की मृत्यु नहीं आनी चाहिए, अगर ये तोता मर गया तो तुम्हारा सर काट दूंगा, तो तुम इसका लेकिन ध्यान रखना, जो पैदा हुआ तो मृत्यु आई आएगी उसकी, जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्य, मृत्यु तो जन्म के साथ ही पैदा होती है कि नहीं। तो कुछ समय बाद तोते की तो मृत्यु आनी थी, तो तोता तो मर गया, लेकिन राजा ने पूछा कुछ दिनों बाद कि वो तोता ठीक है, तो बोले हाँ बिल्कुल तोता बिल्कुल ठीक है, बस देखता नहीं है। तो राजा बोला अंधा हो गया हुआ तोता, तो बोले कि यार तोता अंधा हो गया, शायद तोता के लिए तो चश्मा होता नहीं, तो बोले हाँ बस देखता नहीं है बाकी सब ठीक है। तो फिर कुछ दिनों बाद फिर और राजा ने पूछा तोता ठीक है, तो बोले हाँ बस अब उसने बोलना छोड़ दिया है, पहले देखना छोड़ दिया था बोलना भी छोड़ दिया है। तो राजा ने सोचा मतलब जवान चली गई, अभी जो है चहचहाना छोड़ दिया होगा। तो फिर कुछ दिनों बाद और राजा ने पूछा मंत्री से कि भाई तोता ठीक है, बोला हाँ उसने सुनना बंद कर दिया है। तो फिर राजा को लगा भी ठीक है चलो सब कुछ बाकी सब ठीक है। तो फिर कुछ दिनों बाद और राजा ने पूछा तोता ठीक है, तो बोला कि हाँ बस उसने चलना छोड़ दिया है, वो पिंजरे में खाना उड़ तो वैसे ही सकता खाल नहीं, चलना भी छोड़ दिया अभी। तो राजा बोलते कि वो देखता नहीं है, बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, चलता नहीं है, ये क्यों नहीं बोलते मर गया है वो। तो बोले वो कैसे बोल सकता हूँ, अगर मैंने बोला कि वो मर गया है तो आप मेरी गर्दन उड़ा दोगे, ठीक है। तो बोले इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बोलता नहीं है, चलता नहीं है, सुनता नहीं है, देखता नहीं है, खाता नहीं है। तो बोला वो मैं ये नहीं बोल रहा कि मर गया, वो तो आप बोल रहे हो। तो ऐसे ही जो निराकार वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि भगवान का आंख नहीं है, नाक नहीं है, जीवा नहीं है, उनका मन नहीं है, पैर नहीं है, मतलब देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, खा नहीं सकते, चल नहीं सकते, हाथ से कुछ कार्य नहीं कर सकते, मन से इच्छा नहीं कर सकते। तो आप बोलो भगवान मर गया है, बोले नहीं वो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर बोलेंगे तो हम साधु कैसे रहेंगे। तो भगवान है लेकिन निराकार है, निर्गुण है, इसलिए वो कुछ काम नहीं कर सकता, है कि नहीं। आप बोलो भगवान मर गया है, बोले नहीं वो हम नहीं बोलेंगे, है कि नहीं। तो वी आर थीस्ट, हम भगवान में विश्वास रखते हैं। तो इम्पर्सनलिज्म इज कवर्ड एथीज्म, जो निराकारवाद है वो वास्तविकता में छिपा हुआ नास्तिकवाद है और कुछ नहीं, कि भगवान का आकार नहीं है, भगवान का गुण नहीं है, ना कि भगवान कुछ कर नहीं सकता। तो उसी प्रकार से तोता जिंदा है लेकिन चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, ऐसे भगवान है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, किसी काम का नहीं है भगवान, है ना। दूसरे शब्द में बोला जाए तो अंधा है, बहरा है, गूंगा है, लंगड़ा है, लूला है कि नहीं। तो बोले भगवान है ही नहीं, तो बोले वो हम नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि वो भी शो कॉल्ड धार्मिक रहना चाहते हैं, बोले हम आस्तिक हैं इसीलिए, क्योंकि देन दे कैन नॉट रिमेन साधुस, वो साधु नहीं रह सकते। तो निराकारवाद खाली एक छलावा है नास्तिकवाद का, एक जो है कवर्ड एथिज्म, कवर्ड नास्तिकवाद। तो चैतन्य महापुरुष खंडन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भगवान के पास क्या है, दिव्य मन और नेत्र है। प्रभुपाद जिस तात्पर्य के अंतिम वाले में लिख रहे हैं, इस प्रकार भगवान का मन नेत्र तथा अन्य इंद्रियां दिव्य हैं। और चैतन्य महापुरुष वो क्या लॉजिक दे रहे हैं यहाँ पे, क्या प्रूफ दे रहे हैं, क्या प्रमाण दे रहे हैं? प्रमाण ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जब इच्छा हुई कि वो अनेक भागों में विभाजित हो, स्वांश और विभिन्नांश के अंदर, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कि वो एक नित्य अनेकों नित्य में एक्सपैंड हुए, विस्तार किया उन्होंने, उस एक चेतन व्यक्ति ने अनेकों चेतनाओं में विस्तार किया, एको बहुनाम वो एक थे अनेकों रूप में विस्तार किया, किस लिए? यो विदधाति कामान, अपने आनंद की वृद्धि के लिए। तो जब भगवान ने ये इच्छा की, लेट देयर बी क्रिएशन, जब भगवान की इच्छा हुई कि इस सृष्टि हो, तभी भगवान ने क्या किया, अपने नेत्रों से भौतिक प्रकृति पे दृष्टिपात किया, या कह सकते हैं महत्त्व पे या प्रधान पर जो है दृष्टिपात किया, उससे सृष्टि प्रारंभ हुई। तो महाप्रभु कह रहे हैं यहाँ पे, भगवान बहु हैते जबे कैला मना, कि जब भगवान अनेक होने की इच्छा कर रहे थे, उनकी इच्छा हुई, जबे कैला मना, उनके मन में इच्छा हुई, प्राकृत शक्ति थे तबे कैला विलोकन, तब प्राकृत शक्ति को उन्होंने क्या किया, विलोकन, कृपा अवलोकन कर आमी बड़ा, तो अवलोकन विलोकन किया, देखा उन्होंने, से काले नहीं जन्मे प्राकृत मनोनयन, तो उस समय तो कोई प्राकृत यानी भौतिक नेत्र और मन नहीं थे, नयन मतलब मन, नेत्र आंखें और मन मतलब मन, तो उस समय तो कोई भौतिक मन और आंखें थी नहीं, अतएव अप्राकृत ब्रह्मेर नेत्र मन, इसीलिए जो परम ब्रह्म है, परम सत्य है, उनके क्या है, जो नेत्र और मन है वो कैसे है, अप्राकृत है, वो दिव्य है। इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, इससे सिद्ध होता है कि उनके नेत्र और मन है, लेकिन वो भौतिक नेत्र और मन नहीं है। तो और यहां जो है भागवतम के प्रथम श्लोक के अंदर भी श्री व्यासदेव जी भी लिख रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्यतोन्वयादि तरतश्चार्थेष्व अभिज्ञः स्वरा, कि तेन ब्रह्म हृदय आदि हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत सूरयः, कि भगवान जो अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं, कि जो भगवान है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही नोज एवरीथिंग, यू नो, कि भगवान इस सृष्टि से के हर कण कण से जो है विज्ञ है, अब जो है अनभिज्ञ नहीं है, अभिज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं कि सृष्टि में क्या हो रहा है। तो भौतिक इंद्रियां और आध्यात्मिक इंद्रियों में अंतर क्या है? तो भौतिक जो इंद्रियां है, मेटीरियल सेंसेस हैं, उनमें चार डिफेक्ट्स होते हैं, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारण पाठक, कि यू नो टेंडेंसी टू द सेंसेस की लिमिटेशन है, इम्परफेक्ट सेंसेस। अगर हम इस कमरे के अंदर सारी लाइटें बंद कर दें, सूर्य की प्रकाश बंद कर दें, अंधेरा हो जाएगा, तो चाहे हमारे पास नेत्र हो, हम देख नहीं सकते, हमारे नेत्रों का लिमिटेशन है कि रोशनी चाहिए आंखों से देखने के लिए, केवल नेत्र पर्याप्त नहीं है, तो लिमिटेशन है, हम रात के समय अंधेरे के समय देख नहीं पा सकते, है कि नहीं? या साइंटिफिक टर्म्स के अंदर जैसे आईज का लिमिटेशन है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, यू नो ये उनका वेवलेंथ रहता है जिसके अंदर वो जो है नेत्र देख सकते हैं। टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, गलतियां करने की जो है त्रुटि करने की संभावना रहती है, हम सबसे एग्जाम में फेल हो गए बोले सिली मिस्टेक हो गया था, तो गलती होने का चांस रहता है, और हमारे अंदर जो है धोखा खाने की प्रवृत्ति होती है, मोहित होने की प्रवृत्ति रहती है, रस्सी को सांप और सांप को रस्सी समझने की, और फाइनली चीटिंग करने की जो है धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है। ये भौतिक इंद्रियों के अंदर तो है चार ये डिफेक्ट्स रहते ही रहते हैं, तभी वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है कि वो किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं बनाए गए। उसके बाद में जो ये सेंसेस हैं, अगर आप देखेंगे तो ये लिमिटेड हैं, इनकी बहुत बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, और भगवान ने इन्हें जो है एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बनाया गया है। अभी मान लीजिए हमारे पास जो है हमारे नेत्रों के अंदर एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि हम दूसरे व्यक्ति को पूरे शरीर के रूप में देख पा रहे हैं कि यहाँ ये फलाने फलाने व्यक्ति हैं, इनके हाथ हैं, पैर हैं। मान लीजिए वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे आईज का चेंज हो जाए, ऑफकोर्स दोज अबाउट साइंटिफिक बैकग्राउंड दे नो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ, I mean, you know, relative velocity and relativity जब हम बात करते हैं, so then we use different किस frame of reference से बात कर रहे हैं। तो same way if we मान लीजिए हमारे नेत्रों का frame of reference चेंज कर दिया जाए, हमारे जो जो देखने की शक्ति है इसको माइक्रोस्कोपिक विजन मिल जाए मान लीजिए, तो हमको कैसे दिखेगा वो व्यक्ति? पूरा एटम्स मॉलिक्यूल्स यहाँ पे चल रहे होंगे, है कि नहीं? सारे जर्म्स बैक्टीरिया हमको दिखने लगेंगे। उन्हें पति पत्नी को देख के बोलेगा, अरे तुम्हारे इतने सारे कीड़े क्यों घूम रहे हैं तुम्हारे शरीर के ऊपर? उसको पत्नी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नहीं? दैट्स अ पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर हम देख पाते हैं लाइक दैट। अगर हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दिया जाए तो हमें दिखेगा नहीं ऐसे करके, है ना? जैसे आपने बचपन में कहानी भी सुनी होगी लिलीपुट और गुलीवर की, है कि नहीं? तो वो जब जाता है तो ऐसा उसके सामने लोग ऐसे होते हैं खाने का, जैसे प्लेट के अंदर वो घूम रहा होता है, यू नो, इस प्रकार से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज देयर, अभी हमको दिख रहा है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमें पानी दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर। लेकिन वही अगर एटॉमिक भगवान ने विजन दे दिया तो हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दिखाई पड़ने लगेंगे, है कि नहीं? सो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भगवान ने इंद्रियां बनाई हैं उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमें दिखाई पड़ता है। और देखिए विजन का भी बहुत अंतर है, कैसे? जिस व्यक्ति को जो देख रहा होता है वही दिखाई पड़ता है। जैसे गधे के सामने आप 1000 रुपए का नोट रखेंगे तो उसको लगेगा महाप्रसाद गोविंद खाने के लिए कागज है, खा लेता हूँ, ये लो 1000 रुपए का नोट है, है कि नहीं? वही अगर किसी आर्टिस्ट के पास को 1000 का नोट दिया, बोलेगा क्या बढ़िया डिजाइन किया है इसके अंदर, है कि नहीं? इतना सुंदर जो है कारीगरी किया है सब एटसेट्रा। किसी प्रिंटिंग प्रेस ओनर को देंगे तो बोले 1000 का नोट है, इसका कॉपी नहीं निकाल सकता, जाली नोट नहीं बना सकता। तो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट विजन है। जय श्री जगन्नाथ बलभद्रा महारानी की जय, श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, श्री गौर राय की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो हर एक का अपना रेफरेंस है, ये है भौतिक, ये मटेरियल सेंसेस, दे आर लिमिटेड, उनका अलग जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस भगवान ने बनाया है उसी से हमको दिखाई पड़ता है। ऐसे ही हमारे ऊपर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का जो भी चश्मा लगा है उसी से हमको दिखाई पड़ता है। या अगर विजन की बात किया जाए तो वेदों का विजन क्या है जो हमको बताते हैं? मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत, कि जो भी पराई स्त्री हो अपनी धर्मपत्नी के अलावा उनको माता के समान देखना चाहिए कोई, तो ये वेदों का विजन है। लेकिन कामुक व्यक्ति के लिए हर स्त्री उसकी काम वासना के ऑब्जेक्ट होंगे। अगर शेर के सामने कोई स्त्री जाएगी बोलेगा महाप्रसाद है गोविंद लंच बॉक्स आ गया, है कि नहीं? आज फीस्ट हो जाएगा पूरा। छोटा बच्चा देखेगा तो उनके लिए मम्मी है। वही स्त्री अलग अलग प्रकार से देखी जा सकती है कि नहीं? अलग अलग विजन हो सकती है। तो इसी प्रकार से जो है इस भौतिक दृष्टि के अंदर भी किस विजन से देखते हैं उस विजन की चीज दिखाई पड़ती है लाइक दैट। तो भौतिक जो है चीजें बहुत दे आर रिलेटिव इस प्रकार से, दे आर अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा जाता है लाइक दैट। और उसके अंदर एक और गुण क्या है? डिटीरियोरेट विद टाइम। जो भौतिक इंद्रियां हैं, जो मेटीरियल सेंसेस हैं, समय के साथ वो क्षीण होने लगती है। हम सब अपने जीवन देख सकते हैं, अभी भी अब तक युवा आश्रम लेते बहुत लोगों को चश्मा लग गया है क्योंकि नेत्रों के अंदर क्षीण होने लग गई है, उनकी दृष्टि जो है वो कम हो रही है समय के साथ में। शरीर बाहुबल, पैरों में शक्ति, सुनने की शक्ति, तो मशीन लगाना पड़ता है, सूंघने की शक्ति कम होती जाती है, हर चीज का जो जो शक्ति है उसकी, जो सेंस परसेप्शन है, द पावर ऑफ सेंस परसेप्शन डिटीरियोरेट्स विद टाइम लाइक दैट। हम देखते हैं समय के साथ वो हर चीज कम होती जाती है। लेकिन जो भगवान की इंद्रियां हैं, जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, जो भगवान के बाद भी इंद्रियां हैं, ऐसा नहीं भगवान के पास इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, लेकिन भगवान की इंद्रियां ना तो कभी क्षीण होती है समय के साथ में, चाहे उनके नेत्र हो, उनके मन हो, उनके कर्ण कान हो, स्पर्श इंद्रियां हो, कोई भी इंद्रियां कभी भी समय के साथ क्षीण नहीं होती। भगवान किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नहीं देखते, भगवान को हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाई पड़ सकता है, है ना? भगवान के पास एक साथ सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। इनफैक्ट भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं,
पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों दिखाई पड़ता है उनको। बिकॉज टाइम इज ऑल्सो पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ऐसा नहीं कि भगवान को केवल वर्तमान का दिखाई पड़ रहा है, उनका भूतकाल भविष्य का सब कुछ दिखाई उनको पता लगता है। और भगवान के इंद्रियों में चारों डिफेक्ट नहीं है, जो चार डिफेक्ट्स हैं क्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारण पाठक, ये चार जो फोर डिफेक्ट्स हैं ये भगवान के इंद्रियों में कभी नहीं है। इसलिए भगवान से कभी गलती नहीं होती। हमको लगेगा शायद भगवान ने कोई गलती हो गया है, लेकिन भगवान से कभी गलती नहीं होती। हमको लगता भी होगा मेरे जैसा भला व्यक्ति इस भौतिक जगत में आ गया, भगवान से गलती नहीं हुई तो क्या हुआ? है कि नहीं? किसी किसी को ऐसा लगता है, हम कई बार बोल भी रहे थे, कह रहे मुझे अपने में कभी दिखाई नहीं पड़ती लाइक दैट। तो एनी हाउ जो है, लेकिन भगवान की इंद्रियां क्या है? बिल्कुल आध्यात्मिक है लाइक दैट। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो क्या कह रहे हैं? आई वर्शिप गोविंद द प्रेमी लॉर्ड। अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मानती, कि भगवान की जो इंद्रिया हैं, अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मानती, कि भगवान के जो अंग हैं वो सब एक एक अंग अन्य सभी अंगों का कार्य कर सकता है। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति, और भगवान जो है ईच ऑफ द लिम्स ऑफ दैट ट्रांसेंडेंटल फिगर पोजेस इन हिमसेल्फ द फुल फ्लेज्ड फंक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गन्स, कि भगवान अपने एक इंद्रिय से अन्य सभी इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। हम अपने आंखों से केवल देख सकते हैं, भगवान अपने आंख से सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, आंखों से ही बोल सकते हैं और आंखों से देख भी सकते हैं। भगवान अपने नेत्रों से कुछ भी अपने इंद्रियों एक इंद्रिय से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। और इटर्नली भगवान क्या करते हैं? पश्यन्ति देखते हैं, मेंटेनेंस पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति, कि ये अनेकों ब्रह्मांडों को जो है वो देखते हैं, उनका मेंटेन करते हैं और उनको प्रकट और अप्रकट करते हैं। तो जो है, और बहुत सारे उदाहरण है जब हम देखते हैं भगवान किस प्रकार किसी एक इंद्रिय से अन्य इंद्रिय का कार्य करते हैं। भगवान सबसे पहले तो भगवान केवल सांस लेते हैं और क्या निकलता है? अनेक अनेक ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं उनके पूरे रोम छिद्रों से। अभी हम सांस लेते हैं क्या निकलता है? केवल गंदी हवा निकलती है और कीटाणु निकलते हैं, है कि नहीं? लेकिन भगवान जब सांस लेते हैं तो अनेक अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जो सांस अंदर लेते हैं सारे अंदर चले जाते हैं, है कि नहीं? सब देखते हैं कि भगवान जो है हमें भगवान को क्रिएशन के लिए कुछ नहीं करना होता, सिर्फ सांस लिया और फिर सब प्रकट हो जाता है। भगवान को भगवान लक्ष्मी जी की सहायता से अपने जननेंद्रियों का इस्तेमाल करके ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नहीं करते, उनकी नाभि से ही एक कमल पुष्प प्रकट होता है, उससे ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता, लेकिन भगवान अपनी एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। भगवान नृसिंहदेव, उनको प्रकट होने के लिए कारण नहीं चाहिए, खंभे से प्रकट हुए और केवल नाखून से फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी भगवान ने किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ लेकिन हृदय कश्यप का। तो भगवान जो है वो नाखूनों से हथियार का काम कर सकते हैं। कृष्ण जब मथुरा में प्रवेश करते हैं तो वहां पे कृष्ण और बलराम को वस्त्र पसंद आते हैं और एक धोबी के पास वस्त्र होते हैं और उसे वस्त्र लेने कहते हैं ये वस्त्र हमें दे दो, तो बोले राजा कंस के हैं, कंस का धोबी था। तो भगवान को बहुत गुस्सा आया, देखो भगवान के भी यम क्रोध काम सहज प्रणयादि बीती। तो नहीं, हाँ भगवान ने क्या किया तुरंत धोबी का? सिर्फ अपने हाथ से ऐसे मारा और उसका गर्दन अलग कर दिया। कृष्ण को कोई ऐसा कौन सा आर्ट होता है, कोई मार्शल आर्ट्स नहीं सीखा था उधर, कोई तलवार नहीं था, वो अपने हाथ से जो है अपने किसी भी इंद्रिय से कुछ भी कार्य कर सकते हैं वो। तो भगवान करते हैं ऐसा, है कि नहीं? उसके बाद में भगवान रामचंद्र जब वेट कर रहे थे कि सेतु बंद पे रामेश्वरम पे कि समुद्र रास्ता देगा और अपनी पूरी मानव सेना के साथ में क्रॉस कर सकता हूँ और लंका चले जाऊंगा, तो भगवान जो है वेट कर रहे थे ऐसा, लेकिन तीन दिन तक भगवान ने वहां पे उपवास किया लेकिन समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। तो भगवान को इतना क्रोध आया, पूरा रेड हॉट आईज, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, एकदम उनके आंखों से ऐसे अंगारे बरस रहे थे, और जब ओशन की ओर देख रहे थे पूरा ओशन बॉयल होने लगा बिल्कुल। अभी सोच रहे हम आपको गुस्सा है और गिलास लेके उसकी ओर देखने लगे तो कितनी देर लेते रहेंगे, गर्म नहीं होने वाला, कुछ ही फर्क नहीं पड़ने वाला इस पानी के अंदर। लेकिन जितने एक्वेटिक से जलचर थलचर जितने तिमिंगला फिश थे सबके सब वहां पे जो है कांपने लगे भय के मारे भगवान के केवल क्रोध मात्र से। हम अगर क्रोध का ड्रामा भी करेंगे कोई नहीं कांपता है कि नहीं, खाली हम भी कांपते हैं, लेकिन भगवान को फिर कंट्रोल है। लेकिन भगवान का क्रोध जो है तो भगवान अपने किसी भी इंद्रियों से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे बलराम जी जब महाभारत में युद्ध चल रहा होता है, श्लोक का बुक, बलराम जी जब नैमिषारण्य जाते हैं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो वहां पे वो नैमिषारण्य पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं ऐसे ही संतों की सभा होती है और वहां पे जो है कथा चल रही होती है और रोम हर्षण सूत कथा बोल रहे होते हैं। लेकिन बलराम जी आते हैं, इतने वरिष्ठ हैं, लेकिन वो रोम हर्षण सूत उनका स्वागत नहीं करते किसी प्रकार से, डोंट एक्नॉलेजेस हिज प्रेजेंस। तो बलराम जी क्या करते हैं, एक घास का तिनका लेते हैं और उस घास के तिनके से उसको मार डालते हैं। कोई ऐसा हल या गदा या मूसल लेने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक तिनके से जो है वो हथियार का काम कर सकते हैं। तो कृष्ण जो है, भगवान जो है, उनकी कोई भी इंद्रिय किसी भी इंद्रियों से कार्य कर सकती है। तो प्रभुपाद जी से एक बार किसी व्यक्ति ने आके प्रश्न पूछा, बोले प्रभुपाद स्वामी जी आप बोल रहे हो कि भगवान खाते हैं, आप जो भगवान को भोग लगाते हो है कि नहीं, तो क्या आप खाते हैं ये पत्थर की मूर्त, कोई खाता है क्या, है ना, ये तो अब एसिड पूरा प्लेट वापस आ जाता है। अभी हम खाते हैं तो प्लेट थोड़ी वापस आ जाता है, अगर हमने चार चपाती प्लेट में चार चपाती और खा लिया तो कुछ नहीं बचता, तीन खा तो एक बचता है। लेकिन भगवान को जितनी भी चपाती ऑफर करते हैं वो एज इट इज वापस हमको मिलती है महाप्रसाद के रूप में। तो भगवान खाते हैं कि नहीं खाते हैं। ऐसे ही हुआ था एक बारी जो है एक भौतिक दृष्टि से सो कॉल्ड नॉलेजेबल व्यक्ति थे, शास्त्र दृष्टि से तो महाज्ञ थे, लेकिन उन्होंने देखा कि भगवान को पुजारी ने भोग लगाया और लड्डू रखे थे, चूहा के खा रहा था वो लड्डू, और उसने क्या बोला, ये कैसा भगवान है जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, इसीलिए हम मूर्ति पूजा नहीं करते। और वहां से वो पूरा कल्ट चालू हो गया मूर्ति पूजा नहीं करने का, लाइक दैट। तो एनी हाउ तो उसने बोला प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद आप कह रहे हो भगवान नहीं खाते हैं, प्रभुपाद जी ने आपको मालूम है क्या उत्तर दिया, प्रभुपाद ने श्लोक कोट किया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति अप्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान बोले कहते हैं गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कि जो मुझे भक्ति भाव से पत्ता फूल फल और जल अर्पित करता है मैं क्या करता हूँ, उसे स्वीकार करता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कोट किया, बोले देखो भगवान कहते हैं मैं खाता हूँ, अश्नामी प्रयत, मैं खाता हूँ स्वीकार करता हूँ, तुम बोल रहे हो भगवान स्वीकार नहीं करता है। मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है, विश्वास करना, या तुम पे विश्वास करो कि भगवान नहीं खाते हैं, भगवान पे विश्वास करो कि भगवान खाते हैं। तो बेटर है कि भगवान की बात पे विश्वास करो ना कि तुम जैसे लोफर की, है कि नहीं, विश्वास ही करना है ना, भगवान कह रहे मैं खाता हूं तुम कह रहे नहीं खाते हो, तो इससे अच्छा आज तुम्हारी बात पे विश्वास करो से अच्छा भगवान की बात पे विश्वास करो, लाइक दैट। तो भगवान के जो इंद्रिया है, तो भगवान कैसे खाते हैं, अपने नेत्रों से खाते हैं, ऐसा थोड़ी भगवान में कमी है ना कि गोलोक वृंदावन में या वृंदावन के अंदर यशोदा माता उनको खाने को नहीं दे रही इसीलिए जो है भगवान को आपके भोग की आवश्यकता है, ऐसा तो किसी भी हालत में नहीं है। लेकिन कि हमारे भोजन की आवश्यकता है भगवान को, नहीं तो भगवान दुबले पतले हो जाएंगे, भगवान को वीकनेस होने वाला है, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो रहा है, बाद में विटामिन सप्लीमेंट देने पड़ेंगे, वो सब प्रॉब्लम भगवान को नहीं है, है कि नहीं। भगवान तो हर चीज के जो है उनके पास सब कुछ है, लाइक सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है, बट कृष्णा सीज कि हाँ हम उनको ऑफर कर रहे हैं एंड ही एक्सेप्ट, वो प्रेम को एक्सेप्ट करते हैं, लाइक दैट। तो इस प्रकार से भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं, और वही भी वही बात श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के नेत्र दिव्य हैं, प्रकृति की मन और नेत्र दिव्य हैं। तो भगवान के भौतिक मन का क्या लक्षण है, भौतिक मन आपको भौतिक प्रकृति में लगाए रखता है हमेशा, मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष ये बंधाय विषया संगे मुक्त इंद्र विषय बना, कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष ये, ये जो मन ही है मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधाय विषया संगे, जो मन विषय से आसक्त है वो बंधन का कारण है, और मुक्त निर्विषयी बना है, और जो मन विषयों से मुक्त है वो मुक्ति का कारण है। वेरी सिंपल, केवल मन को जो है विषय से आसक्ति है, विषयों से विरक्ति, दैट इटसेल्फ मेक सिंपली वन अटैच और डिटैच बाय यू नो। तो भौतिक मन जो होता है उसके प्रभाव के अंदर भौतिक अहंकार उसके मन जो है अपने आप को भोक्ता और कर्ता मान बैठता है, लेकिन आध्यात्मिक मन में जानता है कि भगवान असली भोक्ता और कर्ता है और मैं केवल सेवक हूं। तो भगवान का मन कैसा है, भगवान के मन में क्या इच्छाएं होती है? भगवान के मन में एकमात्र इच्छा होती है, क्योंकि भगवान इंजॉयर है, तो एक इच्छा होती है इंजॉय करने की। हम सब भी ऐसा जीवन चाहते हैं कि नहीं, बिंदास इंजॉय करें और कुछ नहीं, लेकिन होता क्या है, आनंद तो इंजॉयमेंट जरा सा रहता है, हर समय परेशानी ज्यादा रहती है। लेकिन भगवान के वो परम सत्य हैं, इसलिए उनकी इच्छा और उनके करने के अंदर कोई टेंशन नहीं आता, भगवान को कोई भेद नहीं आता। जो इच्छा होती है पूरा होता है, हमारी जो इच्छा होती है कभी पूरा नहीं होता, उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स कंडीशन अप्लाई लगे होते हैं, लेकिन भगवान परम सत्य है, इसीलिए वो रिलेटिव ट्रुथ नहीं है, इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। जो उनकी इच्छा होती वैसे ही पूरा होता है। तो ये एक उदाहरण देते हैं कि भगवान, मैं उदाहरण देता कई भक्तों को, बहुत लंबी कथा है, आठवें स्कंद के अंदर आती है भागवतम के, कि जो है एक बारी शुक्राचार्य का अपमान करते हैं इंद्र गलती से, और उनको श्राप मिलता है जो है शुक्राचार्य, बृहस्पति का जो है अपमान हो जाता है, और बृहस्पति नाराज हो जाते हैं और सभी देवताओं की जो है शक्ति क्षीण हो जाती है, बहुत कम होने लग जाती है, और इसी कारण जो है असुरगण, क्योंकि वो शुक्राचार्य के बहुत भली भांति उनकी पूजा करते थे, तो उनका बल बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और सभी देवताओं पे जो है चढ़ाई करते हैं और वो विजयी हो जाते हैं, तो और उनको स्वर्ग से भगा देते हैं। तो सभी देवतागण बहुत जो है दुखी होते हैं, और भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को लेके भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और भगवान कहते हैं अभी समय तुम्हारा बहुत खराब चल रहा है, तो तुम देवताओं से संधि कर लो, दोस्ती कर लो, है कि नहीं, और दोनों मिलकर के क्या करो, समुद्र मंथन करो, तो और मंदराचल पर्वत को जो है आप मथनी के रूप में प्रयोग करना, और वासु के सर को ये रस्सी के रूप में आप इस्तेमाल करना, और दानव जो लोग जो मांगते हैं उनको दे देना, और बोला कि बाद में अमृत प्रकट होगा, उससे आप लोगों की शक्ति वापस आएगी, और जो है और उस साले के सबसे पहले क्या निकलेगा, हलाहल विष निकलेगा, उसे शिवजी पान करेंगे। और तो फिर सभी देवतागण जाते हैं मंदराचल पर्वत, प्योर सोने का, गोल्ड का माउंटेन था प्योर, और जैसे ही उठाते हैं वो, तो बड़ी मुश्किल उठा तो लेते हैं, लेकिन चलने की कोशिश करते हैं तो तुरंत थक पूरा बैठ जाता है, वो इतना भारी होता है, और कितने तो बिल्कुल पापड़ बन जाते हैं, चटनी बन जाते हैं, उनके अंग शत विशत हो जाते हैं। तो भगवान गरुड़ जी के ऊपर आते हैं अजीत के रूप के अंदर, और उनके ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं, और जैसे कृपा दृष्टि करते हैं सब बिल्कुल सही सलामत हो जाते हैं। देखिए भगवान की दृष्टि ऐसे होते हैं, है कि नहीं, अभी हम इतने सारे मेडिसिटी मेदांता बोलो एस्कॉर्ट हमें जाना पड़ता है, लेकिन भगवान के एक बार दृष्टिपात हो जाए तो सारे रोग जो है सब खत्म, है कि नहीं। हमको इतना फ्रैक्चर, किसी का फ्रैक्चर होता है 2 महीने लगते हैं, 8 हफ्ता लगता है, 6 हफ्ता लगता है, लेकिन भगवान का दृष्टिपात वो सारे जो मर गए थे वो भी जिंदा हो गए, जितने देवता और असुर जो दोनों थे। और फिर भगवान एक हाथ से उठाते हैं उसको गरुड़ जी पे रखते हैं मंदर पर्वत को, और लेके जाते हैं समुद्र के बीच में रखते हैं, वासु की सर्प को बुलाया जाता है, और जैसे ही वो चटनी चालू करने वाले होते हैं एक नई समस्या, मंदर पर्वत इतना भारी होता है डूब जाता है समुद्र के अंदर। तो वो दोनों देवता और दानव दोनों परेशान, अब क्या करें, और तब एक और अवतार प्रकट होता है, देखते नीचे से महाविशाल कूर्म जो है वो प्रकट हो रहा है, टॉर्टोइज केशव धृता वसति दशन शिखरे धरणी, केशव धृता कूर्म शरीर जय जगदीश हरे, और फिर वो चरणी चालू करते हैं, और ऐसे लीला होता है। बाद में भगवान अजीत स्वयं वहां पे रस्सा खींचने लगते हैं, क्योंकि देवता लामा तो थक जाते हैं, तो भगवान जोर लगाते हैं चरणिंग करने के अंदर, और अंत में प्रकट होते हैं कौन, धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके। तो ऐसे 5 अवतार होते हैं टोटल, बोलो। और अगर कोई इसका कारण पूछेगा ये क्यों हुआ, आपको मालूम है इसका कारण क्या था, ये सारी लीला हुई क्यों, हा? क्योंकि बस भगवान को पीठ में थोड़ी खुजली हो रही थी, है कि नहीं, और भगवान का खुजली का जो एंजॉयमेंट है वो भी सुप्रीम होना चाहिए, तो हमारी तरह नहीं खुजा लिया कुछ हो गया, है कि नहीं। तो कृष्ण को एंजॉय करने के लिए पूरा इतना लीला किया, देवता दाना पूर्व को लगा दिया, और भगवान कूर्म के रूप में जब इतना बड़ा मंदिर पर्व से खुजली हो रहा था कर रहे थे, तो भगवान को बहुत रिलीफ मिला था। तो भगवान का जो है मन दिव्य है, कृष्ण इज एंजॉयिंग टेंडेंसी, लेकिन सुप्रीम एंजॉयमेंट। हमको भी कभी खारिश आता है तो लोग पूरा चाकू लेके और जाने क्या क्या ऐसा, या पैर में खारिश आता है तो कारपेट लेके खुजाते हैं कि नहीं, और अलग अलग तरीके से कुछ कुछ करते हैं। लेकिन भगवान को भी खारिश आता है तो कुछ सुप्रीम होना चाहिए, कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना चाहिए। कृष्णा इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनैलिटी, इज अ पर्सन बट इज नॉट लाइक पर्सन लाइक यू एंड मी। वह मॉडल व्यक्ति नहीं है आपकी और हमारी तरह, वो दिव्य व्यक्ति है कि नहीं। और यही दिव्यता बता रहे हैं कि वो एक व्यक्ति है, और हमारे अंदर जो जो स्वभाव है वो सब टेंडेंसी भगवान से ही आ रहा है, कि नहीं। अच्छा या बुरा, सो कॉल्ड इमोरल एक्टिविटीज आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम कृष्णा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो पूर्ण रूप के अंदर और शुद्ध रूप के अंदर है। कि नहीं, हम चोरी करते हैं हमें जेल में डाला जाता है, भगवान चोरी करते हैं गुणगान होता है, कि नहीं। भगवान माखन चोरी करते हैं, भगवान जो है गोपियों के वास्ते चोरी करते हैं और लोग उनका गुणगान करते हैं। एक भक्त ने पूरा भजन लिखा है जो पुरुषोत्तम मास में गाते हैं, व्रज प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। मैं चोरों के राजा को प्रणाम करता हूँ। कौन है चोरों के राजा? व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, कि व्रज में प्रसिद्ध है भगवान कैसे माखन चोर के रूप में। गोपांगनानां चदुकुल चौरम, गोपिया गोपांगनाओं के जो है वस्त्र चुराते हैं, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के जो है पाप को चोर हरण करने वाले हैं। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि श्री राधिकाया हृदयस्थ चौरम नवाम्बुदश्याम अलकांति चौरम, कि श्री राधिका रानी के हृदय को चुराने वाले हैं और घनश्याम मेघ की कांति को चुराने वाले हैं, ऐसे चोरों के पुरुष भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। तो भगवान दिव्य है कि नहीं? लेकिन अभी जगन्नाथपुरी के अंदर हम जाते हैं और रथ यात्रा के अंदर देखते हैं भगवान के रथ में कितने पहिए होते हैं, 32 या 36 पहिए होते हैं मेरा ख्याल है जगन्नाथ जी के रथ के अंदर। अभी तो देखिए किसकी गाड़ी में 36 पहिए होते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी साधारण व्यक्ति की छोटी सी गाड़ी होती है कि नहीं। लेकिन भगवान का गाड़ी इतने सारे लोग खींचने के लिए आते हैं, आप सोचिए है कि नहीं। हमारा बर्थडे आता है 2, 4, 5, 10, 15, 20 लोग विश करते हैं आपको है कि नहीं। लेकिन जन्माष्टमी होती है, भगवान का जब जन्मोत्सव होता है, बिना बुलाए कितने लोग मंदिर आते हैं उनको विश करने के लिए है कि नहीं। मैं भी पीछे द्वारका मंदिर गया था तो इसके सम्मुख लीला को बता रहे थे, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था 25,000 लोग आएंगे वहां पे, और कह रहे पूरा मैनेजमेंट सिस्टम इतना एंग्जाइटी में आ गया, 3 लाख लोग आए वहां पे जन्माष्टमी के दिन, 3 लाख लोग। सोचिए द्वारका क्या था, अरे बोला हमारे यहाँ कितने आए थे, 2.5-1 लाख करीब यहाँ पे आए थे, और बड़े मंदिर में कितने आए और 7.5-8 लाख लोग आए होंगे। अब सोचिए खाली दिल्ली के अंदर 15-16-20 लाख लोग, वो तो इस्कॉन मंदिर के अंदर खाली, और बाकी मंदिर में और कितनी जगह में गए होंगे तो नहीं आएंगे। और सोचे भगवान को बर्थडे इसीलिए, दैट शोज इज गॉड। कोई बोलता है प्रभुपाद जी व्यक्ति आया बोले भगवान देखो कृष्ण कितने कामुक हैं, 16,108 पत्नियों से शादी किया, प्रभुपाद के दैट शोज इज गॉड। इफ कृष्णा हैज टू बी लस्टी ही हैज टू बी सुप्रीमली लस्टी। अगर भगवान को कामुक होना है तो उनका भी काम वासना पूरा पूर्ण मात्रा में होना चाहिए। कोई भौतिक व्यक्ति कोई 16,108 आदमी शादी नहीं कर सकता। किसी वक्त ने कैलकुलेट किया था, बोले अगर मान लो एक रानी से वो आज मिले और एक नंबर रानी से 16,109 नंबर आएगा तो 44 साल लगते हैं उनको मिलने के लिए, 44 साल बाद पहली रानी का नंबर आएगा। लेकिन भगवान कृष्ण 16,108 रानियों को पूरा मेंटेन करते थे। तो इस दैट शोज इज गॉड है कि नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी शो एक्टिविटी शोज दैट भगवान जो है वो दिव्य है। जानने की बात है कि भगवान हमारी तरह ही एक व्यक्ति है, सिर्फ वो दिव्य है कि नहीं। और क्योंकि उनके नेत्र और मन दिव्य हैं, उनकी सेवा में लगा करके इवन मटेरियल माइंड एंड सेंसेस कैन बी स्पिरिचुअलाइज्ड। दिव्य तो नहीं बन जाएंगे लेकिन हाँ दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं वो है कि नहीं। इन नेत्रों और मन और इन इंद्रियों को भी अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवा तो स्वयं एवं स्मृतियतः, कि भक्त के भी जो इंद्रियां हैं वो दिव्य हो जाती है, आध्यात्मिक हो जाती है जब उनको भक्ति के प्रोसेस में लगाया जाता है। जैसे अग्नि के स्पर्श में यदि लोहे को रखते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, उसके अंदर अग्नि के सारे गुण प्रकट हो जाते हैं, द आयरन बिकम्स रेड हॉट लाइक दैट, यू नो। और उसके बाद उसको कहीं भी स्पर्श करेंगे वो तो अग्नि का ही कार्य करेगा। तो उसी प्रकार से जब भगवान की दिव्य सेवा में, क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट है, उनसे संबंधित हर वस्तु दिव्य है, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनका रूप, उनका धाम, उनके पार्षद, उनकी सेवा, सब कार्य दिव्य है। तो जब इनके ना लगाते हैं तो हमारी भौतिक इंद्रिया, भौतिक शरीर भी दिव्य बन जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे आचार्य गण हैं, जो उन्नत भक्त होते हैं, वो भौतिक मानसिक इन परिस्थितियों के ऊपर उठ जाते हैं, है कि नहीं। तो मटेरियल बॉडी इज नॉट लिमिटेशन टू देम सो मच, जितना हमको भौतिक भौतिक देह लिमिट करता है, हमारे आचार्यों को लिमिट नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को ट्रबल नहीं करता। श्रील प्रभुपाद जी वह गाड़ी में जा रहे थे, मेरे को मालूम नहीं किस जगह है, विदेश की बात है, तो प्रभुपाद पीछे की सीट पर बैठे हुए थे और somehow जस्ट एक क्षण में प्रभुपाद ऐसे आलती बालती मार के बैठ गए और अपने आगे अपनी छड़ी को ऐसे लगा दिया, ऐसे ही रखा हुआ था छड़ी, लेकिन ऐसे पकड़ के बैठ गए। और जस्ट सेकेंड्स बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठक करके जो है। तो जो शिष्य साथ में थे, गर्ग मुनि प्रभु साथ में थे, तो उन्होंने प्रभुपाद पकड़ने की कोशिश तो किया, पर प्रभुपाद के ऐसे घुटने में थोड़ी चोट भी लगी और खून भी आया और शायद थोड़ा मुंह पे स्कार भी आया था, और अन्य भक्तों जो आगे बैठे थे उनको भी थोड़ा चोट लगा। तो जब मंदिर में पहुंचे, सब भक्तों ने देखा कैसे प्रभुपाद का खून बह रहा है थोड़ा गाड़ी का, और पता लग गया था गाड़ी का ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, दूसरी गाड़ी आई है उसको लेके गए हैं। और प्रभुपाद बहुत ग्रेव थे, बहुत ही गंभीर, शिष्य भी सब देख रहे हैं प्रभुपाद गंभीर है। और फिर प्रभुपाद को थोड़ा चलने में हल्का दिक्कत हो रहा था, लेकिन प्रभुपाद बोले भक्तों को, बोले फिर देखा कि भक्त लोग भी गंभीर हो रहे हैं, है कि नहीं। तो प्रभुपाद ने सोचा कि नहीं, अभी वातावरण में जो गंभीरता है, टेंशन कम किया जाए। तो प्रभुपाद एक लाइन बोला उन्हें, एज लॉन्ग एज देर विल बी मटीरियल बॉडी देर विल बी ट्रबल्स, जब तक इस भौतिक देह है तब तक कुछ ना कुछ कष्ट लगा रहेगा। तो चाहे शुद्ध भक्त भी क्यों ना हो, अपेरेंटली उनके शरीर में भी जो है ऐसी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन फिर भी हम देखते थे प्रभुपाद को कितना भी दिक्कत आए शारीरिक रूप से, उनका सेवा कभी नहीं रुकता था। जब प्रभुपाद विदेश के अंदर एक लेटर लिख रहे हैं एक भक्त को कि nowadays I have a ringing sound going on in my ears, जब मैं रात को सोता हूं तो मेरे जो है घंटी की आवाज मेरे को ऐसे सुनाई पड़ते रहता है ओल्ड एज के कारण जो है। प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं, इसके कारण मैं 2-3-4 घंटे से ज्यादा एक बार में सो नहीं पाता हूँ, रात में इससे नींद नहीं आता है। लेकिन प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, बट दैट इज वेरी गुड, अगर हमको नींद नहीं आता हम परेशान होने लगते हैं कि नहीं, लेकिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, आई गेट मोर टाइम टू ट्रांसलेट माय भागवतम। तो प्रभुपाद जो है उसको भी सेवा के अंदर देख रहे हैं कि भगवान की इच्छा, कोई बात नहीं, सोए तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू नो हालांकि भौतिक देह समस्या देगा, तो इज कॉशियस दैट यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ द बॉडी लाइक दैट। लेकिन हम जब भक्ति कर रहे हैं तो भगवान के इसी दिव्य इंद्रियों को, दिव्य नेत्र जो बताए हैं, इसी कृपा कटाक्ष को जो है हम प्राप्त करने की जो है आशा कर रहे हैं। यही हमारा लक्ष्य है कि भगवान अपने दिव्य कृपा दृष्टि जो हमारे पर डालेंगे, जैसे हम दामोदर आश्रम प्रार्थना करते हैं, कृपा दृष्टि वृष्ट्यादि दीनम बतानो गृहाणि शमामज्ञा मेधक्षिदृश्य, कृपा दृष्टि वृष्ट्यादि दीनम बतानो, कि ये भगवान इस कृपा दृष्टि की बारिश मेरे ऊपर कीजिए, क्यों, क्योंकि मैं बहुत दीनहीन हूं। हम यही प्रार्थना करते हैं, हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा अवलोकन कर आमी बड़ दुखी, कि हे नित्यानंद प्रभु आप कृपा कीजिए, कृपा कृपा अवलोकन कर आमी बड़ दुखी, हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद, आप तो हमेशा सुखी है नित्यानंद, प्रेमानंद में सुखी है, कृपा करके मेरे पर दृष्टिपात कीजिए क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, आप कृपा दृष्टि प्राप्त होगी तभी मैं सुखी हो सकता हूँ। तो जो है हमें जानना चाहिए कि भगवान के नेत्र, भगवान के सब दिव्य हैं, और विशेषकर उस दिव्यता में एक मुख्य लक्षण है, वो है भगवान की कृपा, भगवान का वात्सल्य, अपने भक्तों के जो वात्सल्य है। तो जब भक्त भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, प्रेयर्स गो अप एंड ब्लेसिंग्स कम डाउन, कि जब भक्त भगवान से जो है बड़े सच्चे हृदय प्रार्थना करता है तो भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं। भगवान विग्रह के रूप में खड़े इसीलिए हुए हैं कि भक्त आए प्रार्थनाएं करें और मैं उनको आशीर्वाद दूं। सो दैट इज यू नो दे एक्सेप्ट सर्विस, अवर सर्विस यू नो इन द फॉर्म ऑफ ड्रेसिंग देम, कि हम उनको सुंदर सुंदर आभूषण अर्पण करें, उनके लिए सुंदर श्रृंगार करें, फूलों का जो है सजावट करें, और हम जो है भेंट लेकर के आए, दर्शन दे हम दर्शन ले भगवान का और अपने नेत्रों को आध्यात्मिक बनाएं। इन नेत्रों के अलावा अन्य किसी वस्तुओं, इस भौतिक दृष्टि को, भौतिक जगत को देखने भौतिक जगत में कोई सुंदरता नहीं है, इट्स इल्यूजरी ब्यूटी, इट्स वेरी टेम्पररी ब्यूटी, प्रॉपर कहते हैं लिक्विड ब्यूटी, है ना। असली सुंदरता श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की है, भगवान की है, इन्हीं को हमें लगाना चाहिए और भगवान की कृपा दृष्टि की याचना करनी चाहिए, उन दिव्य नेत्रों को, उन दिव्य दृष्टि को हमें करना चाहिए। इसीलिए जो है भक्त ऊर्ध्व मान्य तंत्र में शिवजी पार्वती जी को ये दो प्रार्थनाएं लिख रहे हैं, राधा कृपा कटाक्ष और कृष्ण कृपा कटाक्ष। कृपा कटाक्ष कि भगवान के जो कटाक्ष होता है मतलब साइड लॉन्ग ग्लांस, भगवान सीधा तो वैसे नहीं देखते कभी भी, हमेशा तिरछा ही देखते हैं, साइड लॉन्ग ग्लांस। तो इज एस्पायरिंग फॉर जो है साइड लॉन्ग ग्लांस ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा जो है। तो इसमें मैं कुछ पढ़ तो नहीं रहा लेकिन ये बहुत फेमस है, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन मुनिन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी व्रजेंद्र भारु नंदिनी व्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। कि जो है कदा करिष्यसि हमाम कि कब श्रीमती राधा रानी की कृपा कटाक्ष हमको प्राप्त होगा, कब जो है श्री भगवान श्री कृष्ण का कृपा कटाक्ष हमको प्राप्त होगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स टू परफॉर्म कृष्णा कॉन्शियसनेस व्हाइल इन दिस बॉडी एट द सेम टाइम मेंटेनिंग अ लॉन्गिंग टू सी कृष्णा फेस टू फेस। कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ है कि जब तक भौतिक देह भौतिक इंद्रिया हमारे पास है इनको भगवान की सेवा में लगाना और ये तीव्र इच्छा को बनाए रखना, तत्र मूल्यम अभी एकलम लौल्यम, इस लौल्य को इंटेंस ग्रिड को बनाए रखना कि एक दिन मुझे जो है भगवान श्री कृष्ण के को साक्षात देखने का मौका मिलेगा। और इसीलिए इस तीव्र इच्छा को बनाए रखना और इसी भावना से अपने कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस को मेंटेन करना। थोड़ा समय बाद हमने डिस्कस किया क्या कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि सृष्टि से पहले कोई प्राकृत जो है भगवान बहु है तबे कई लमन, कि भगवान की इच्छा हुई जो है बहु अपने आप को विभाजित करने की और इसीलिए प्राकृत शक्ति तब है कैल विलोकन, इसे प्राकृत शक्ति विलोकन किया लेकिन क्योंकि उस समय अप्राकृत शक्ति थी नहीं तो इसीलिए भगवान के जो ब्रह्मे रहते हैं वह प्राकृत ब्रह्मे नेत्र मना, भगवान के नेत्र और मन क्या है जो वो है अप्राकृत है अर्थात दिव्य है। तो परम सत्य एक व्यक्ति है जिनके नेत्र जिनकी इंद्रिया जिनका मन है उनके पास लेकिन वो आध्यात्मिक और दिव्य नेत्र दिव्य इंद्रियां हैं। और हमने बताया भौतिक इंद्रियों के क्या क्या लक्षण है, भौतिक इंद्रिय मन के उसमें चार दोष रहते हैं, कौन कौन से, इम्परफेक्ट सेंसेस अपूर्ण इंद्रियां भ्रम करने की भ्रमित होने की प्रवृत्ति धोखा खाने की प्रवृत्ति और धोखा देने की प्रवृत्ति, ये चार प्रवृत्तियां मोहित होना या और धोखा देना और उनकी लिमिटेड रहती है एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहती है वो इंद्रियां तो उनकी लिमिटेशंस है बहुत सारी और वो समय के साथ वो क्षीण होती हैं। लेकिन आध्यात्मिक इंद्रियां कभी समय के साथ क्षीण नहीं होती, वो अपूर्ण उनमें कोई डिफेक्ट्स नहीं है और वो असीमित है वो सीमित नहीं है। और भगवान के इंद्रियों में एक विशेष बात है कि वो अपनी किसी भी इंद्रिय से किसी भी अन्य सारी इंद्रियों में कार्य कर सकते हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण चर्चा की है कि ब्रह्मा जी की नाभि से उन्होंने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से जो है उस धोबी का वध किया और इत्यादि 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 और भगवान जो है जो भी लीला करते हैं एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, भगवान का मन है। और एक लीला हमने डिस्कस की कि कूर्म रूप की, कि भगवान ने इतना कह सकते ताम झाम किया केवल अपनी खारिश को करने के लिए है कि नहीं। और अंत में भगवान के ऐसे दिव्य नेत्रों दिव्य इंद्रियों को जब हम की सेवाओं में जब हम से, की सेवा में कि उनकी प्रसन्नता में जब अपनी इंद्रियों को लगाते हैं सर्वपादी विनिर मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इन इंद्रियों को ऋषि को ऋषिकेश भगवान ये जो इंद्रियों के मालिक हैं उनकी सेवा में लगाते हैं तो क्या होता है ये इंद्रियां भी आध्यात्मिक बन जाती हैं। जिस प्रकार एक लोहे को अग्नि में रखते हैं तो लोहा भी अग्नि का कार्य करने लगता है। और फाइनली जो हम इन भौतिक दूषित इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो हम इसीलिए कि भगवान की अहेतु की कृपा हमारे ऊपर होगी, कभी भगवान अपनी साइड लॉन्ग ग्लांस हमारे ऊपर करेंगे। और ऑफ कोर्स हम इतने शुद्ध नहीं है कि भगवान हम पे अपनी कृपा करें, इसीलिए हमें क्या चाहिए वैष्णवों की दृष्टि। कबे श्री चैतन्य मोरे करीबे न दाया कबे आमी पाई वो वैष्णव पद छाया, कि कब वैष्णव ठाकुर मेरी दीनहीन अवस्था को देख के मुझ पर कृपा करेंगे, कब जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे डालेंगे और जब भगवान की कृपा दृष्टि होगी, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा दृष्टि हमें प्राप्त होगी, तब फिर भगवान बाध्य हो जाएंगे अपनी कृपा देने के लिए। इसीलिए जो है एक भक्त होता है भगवान के भक्तों के याचना करता है उन्हें कृपा दृष्टि की, वो उन पर कृपा दृष्टि डालें, क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि भी क्या है आध्यात्मिक शक्ति से संचारित है। और लास्ट में उदाहरण देना चाहूंगा जना निवास प्रभु का, वो कई बार प्रवचन में बताते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी कृपा दृष्टि उनके ऊपर डाली, जब पहली बार जना निवास प्रभु प्रणाम करके खड़े हुए और देखा प्रभुपाद इज लुकिंग राइट इन टू हिज आईज, और प्रभुपाद जी जो है अपनी दृष्टि इसलिए जना निवास प्रभु के वो देख रहे हैं, जना निवास प्रभु को ऐसे लगा कि मैं बिल्कुल निर्वस्त्र खड़ा हूं उनके सामने, प्रभुपाद जी पूरा अंदर तक मेरे अंदर जो गंदगी है सब देख पा रहे हैं, है कि नहीं। तो जो आध्यात्मिक जो शुद्ध भक्त होते हैं वो देख पाते हैं पतित जीवों की अवस्था के अंदर कितना आसक्ति है, कितना काम वासना है, कितना अधिक भोगने की इच्छा है, वो तुरंत देख पाते हैं। तो भक्तों के अंदर जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अशुद्धता को बहुत क्लियरली देख पाते हैं। ऐसा ही एक्सपीरियंस सच्चिदानंद स्वामी महाराज का भी था इसी प्रकार का, और बहुत सारे भक्तों का था कि प्रभुपाद जी की जब प्रभुपाद जी की दृष्टि उनके ऊपर कहीं पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि जो है आइदर दोनों चीजें होती थी, दे यूज टू फील एक्सपोज्ड और यू दे यूज टू फील कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस, आइदर ऑफ द टू लाइक दैट। सो दैट वे जो है भक्तों की यदि कृपा दृष्टि हम प्राप्त होती है तो हम भी जो है भगवान की इन आध्यात्मिक दृष्टि इंद्रियों की और मन की सेवा कर सकते हैं। जय श्री ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, सार्वभौम भट्टाचार्य की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हर की कृष्ण। एक लास्ट चीज अगर आप एक मिनट का समय दें तो मैं आपको बताना चाहता था, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा थे उनका नाम था प्रबोधानंद सरस्वती, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर जो है श्लोक लिखा है वो मैं आपको इसे बताना चाहता था जो मैं भूल गया। कैवल्यम नरकायते दिदशपुर आकाश पुष्पायते दुर्दान्तेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते विश्वं पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्च कीटायते यत्कारुण्य कटाक्ष वैभवनां तं गौरव गौरव एवस्तु मह। बोल रहे कैवल्य नरकायते, मुक्ति किसके समान, नरक के समान है। त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, जो स्वर्ग का सुख है वो किसके समान है, आकाश पुष्प के समान है। आकाश पुष्प कौन सा रंग का होता है, होता नहीं है, वो फ्लावर्स इन द स्काई कभी दिखते नहीं है। तो स्वर्ग का सुख ऐसा ही होता है, स्वर्ग का सुख बोलने को है लेकिन कोई सुख नहीं है। दुर्दांत इंद्रिय काल्प सर्प पटली प्रोत्काट दंष्ट्रायते, योगी के लिए जो वो इंद्रिय कंट्रोल सेंस कंट्रोल की इच्छा करता है, लेकिन भक्त के लिए जो इंद्रियां है जड़ इंद्रिय ताहे का वो कैसे हो जाती है, जैसे सांप के दांत टूटे हुए हो। विश्वम पूर्ण सुखायते, और ये विश्व कैसा है, पूर्ण रूप में सुख से बन जाता है। विधि महेंद्र कीटायते, और महेंद्र इंद्र इत्यादि का उत्पत्ति कैसा बन जाता है, वो कीड़े के समान जैसा, किसके सामने, यद कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरव, तम गौरव एव स्तुमः। तो चैतन्य महाप्रभु जो गौर है, यदि उनकी कृपा कटाक्ष साइड लॉन्ग ग्लांस यदि किसी को थोड़ी सी प्राप्त हो जाती है तो ऐसे भक्त के सामने कैवल्य नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्प सब हो जाता है। ऐसे श्री गौरांग महाप्रभु जो मोस्ट मैग्नानिमस पर्सनैलिटी है, मैं उनकी उपासना करता हूँ कि वो अपनी कृपा कटाक्ष भी मार बढ़ा देंगे। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि।